ओम शांति, ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज ये दूसरा सत्र हम सभी सुनेंगे, जो राजयोग का मुख्य आधार है। कल आप सभी ने स्वयं का परिचय तो जरूर प्राप्त किया कि हम सभी इस देह में चैतन्य शक्ति आत्मा है, लेकिन जब योग कहते हैं तो योग माना ही जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। यहां जिस कनेक्शन की बात की गई है वो है मन का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ। परंतु जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी मान्यता है कि शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया के अंदर इतने मत मतांतर है, इतने सारे ओपिनियंस है ईश्वर के बारे में कि कई बार मनुष्य इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर भी सत्य क्या है। और इसलिए जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर के साथ वो कनेक्शन है ही नहीं। तभी तो ये शिकायत हमेशा बनी रहती है मनुष्य की कि भगवान की याद बड़ी मुश्किल है, याद करना चाहते हैं मन लगता नहीं है, मन भटक जाता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि कहां लगाना है वही मालूम नहीं है, किसमें लगाना है। एक बार एक बहन मेरे सामने आई और कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है भगवान तो एक होना चाहिए ना, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है। फैमिली में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती बेटा मंदिर चलो, कोई ओकेजन होता है, त्योहार होता है, वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहाँ अपने मन को एकाग्र करूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मंदिर जाकर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, क्योंकि शायद उसके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाती हूं। लेकिन शायद ये उस माँ का ही प्रॉब्लम नहीं है। आज की दुनिया के अंदर हर बच्चे के मन में ये सवाल होगा जो अपने माता पिता से पूछते होंगे, और जब उनको सही उत्तर नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो भी नास्तिक बनता जा रहा होगा। कम से कम हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि आखिर वो ईश्वर कौन है, जिसके लिए कहा कि वो सत्य है। ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य तो एक ही होता है। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे सब सत्य है, इम्पॉसिबल। सत्य एक होना चाहिए। तो ईश्वर के विषय में सत्य क्या है? क्योंकि दिन प्रतिदिन आज मनुष्य ईश्वर से दूर ही होता जा रहा है। एक बार हमने एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में व्यापक है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था जितने भी इष्ट देवी देवता है सब भगवान के रूप है, समय प्रति समय विभिन्न अवतार लेकर के इस संसार में अवतरित हुए हैं। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर है तो प्रूव करो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा? व्हाट इज ट्रुथ? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या नेचर को परमात्मा कहे या आत्मा को परमात्मा कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? कितना कंफ्यूजन है ईश्वर को लेकर के। क्या उसको परखने की कोई कसौटी नहीं है? जिस तरह एक जवेरी के पास भी कसौटी रहती है जिस पर वो कसकर देखता है सोना कितना कैरेट का है, तो ईश्वर किसको कहा जाए उसको परखने की कोई कसौटी? जरूर है। और वही कसौटी आज हम आपको देने जा रहे हैं। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा वो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, नहीं। आज हम आपको वो कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। ये कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात है ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन। दूसरी बात, ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता है, उसका कोई आराध्य नहीं हो सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा उन सभी चक्रों से पर है, जैसे कि जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से जो परे है, अब जिसने जन्म ही नहीं लिया तो देह नहीं है, देह नहीं है तो देह के संबंध नहीं है, जो देह और देह के संबंध के चक्र से परे है, जिसने देह धारण किया उसने कर्म किया और कर्म किया तो उसका फल भोगना पड़ता है, तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में हम आते हैं, ईश्वर उससे परे हैं, अकर्ता अभोक्ता। जिसने कर्म किया, या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में हम आते हैं, वो उससे परे हैं, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, वो उससे भी परे हैं। दुख हरता सुख करता कहा गया है। जो इन सभी चक्रों से पर, उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात, ईश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, थर्ड आई ऑफ विजडम, और उसको कहते हैं त्रिदेव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसकी महिमा में कहा गया है, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर उसकी महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? अगर एक एक मत को उठा करके इस कसौटी पर कस कर देखें, तो जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे नहीं? दूसरा, हाँ, करेंगे नहीं करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहे, प्रकृति ही परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। सत्य यह है कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है, यह कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माता शिपिता त्वमेव। सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा की संतान है? आपका विवेक क्या कहता है? परमात्मा की संतान है कहना ठीक है। तो आत्मा सो परमात्मा कहना यह अज्ञान है, इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन, जो हमने मान लिया या कह दिया सत्य तो नहीं है। देखो, दुनिया के अंदर मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने पाप कर्म किया तो कहेंगे पापात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। संसार में देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक। परमात्माएं ये शब्द कभी नहीं आता, सिंगुलर फॉर्म में ही आता परमात्मा। और ये सब भी आत्मा है, परमात्मा एक भी नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। भारत में देवताएं भी कितने दिखाए, 33 कोटि, सब देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा एक भी नहीं है। तो परमात्मा कौन? कई बार कई लोग हमें एग्जाम्पल देते सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, इसी तरह एक बड़ा परमात्मा था, वहां से हम छोटे छोटे आत्माओं के रूप में इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना, परमात्मा बन जाना है, ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति है, एनर्जी है, कॉन्शियंट एनर्जी, जिसको चैतन्य शक्ति, और चैतन्य शक्ति का नाइदर क्रिएशन नॉर डिस्ट्रक्शन, उसको न क्रिएट किया जा सकता है, टुकड़ा किया जा सकता है, न वो विलीन हो सकता है, उसका अपना अस्तित्व सदा है। इसीलिए गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है, जर्जर भी नहीं होती, अजर अविनाशी अमर, मरती भी नहीं है आत्मा। तो वो परमात्मा में अगर विलीन हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अगेन, पुत्र पिता का अंश है ये शरीर जो मैटर का बना है, और इसलिए अंत में वही पांच प्रकृति में, पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, क्योंकि ये मैटर है। एग्जाम्पल अगर दो तो बराबर का तो दो, कहां मैटर और कहां एनर्जी, दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। मैटर मैटर में विलीन हो सकता है, शक्ति शक्ति में विलीन नहीं हो सकती है, उसका अपना अस्तित्व सदा रहता ही है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है, तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हमने हमेशा दो दो बातें कही, आत्मा सो परमात्मा का और आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर है, प्रकृति परमेश्वर की रचना, ये भी कहा। इसी तरह ब्रह्म ईश्वर है कहते हैं, और दूसरी ओर कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो पांच तत्वों की दुनिया से पार रहने वाला परमेश्वर, ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है, इट इज अगेन आउट ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर हो गई बात? चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, तेरे में भी ईश्वर, मेरे में भी ईश्वर, जहां देखो वहां तू ही तू है, ये कहां तक सत्य है? अगर कण कण में भगवान है, तो जब एक मनुष्य दूसरे का खून करता है, कोई गलत काम करता है, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या उसके पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी पावर नहीं है क्या? आज घर में बच्चे हैं, मां बाप बैठे हैं सामने, और किसी बात को लेकर बच्चे लड़ने लगे, मारपीट करने लगे, तो माता पिता देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है, दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर जिसको कहा। क्या उस समय उसकी करुणामयी कहां गई? जो एक आत्मा को बुरे कर्म से छुड़ा ना सके, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब? देखो जब कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है, हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो। का कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने। अनजानेपन में भी मुख से यही निकला ऊपर वाला जाने। हु इज दिस ऊपर वाला एंड हु इज दिस नीचे वाला, वो दोनों एक ही है, अलग है। व्हाट इज द ट्रुथ, सत्य क्या है? ऊपर वाला कहा अनजानेपन में भी, ऊपर वाला सब देख रहा है कहते हैं ना, नीचे वाला देख रहा है कभी कहा। अगर वो नीचे होता, सर्वव्यापी होता, तो इतना अधर्म बढ़ता ही नहीं था। गीता के चौथे अध्याय में जब भगवान ने वायदा दिया है यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अगर वो यही है कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? फिर तो गीता के ये महावाक्य गलत है, ये भगवान का वायदा ही गलत है। अगर वो सर्वव्यापी है तो, लेकिन तब कई बार कई लोग हमें कहते हैं सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्रों में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्रों में किस भाव से ये बात लिखी गई है? एक भावनात्मक सत्य के रूप में लिखा गया है। जैसे मान लो कि आज आपका बच्चा कहीं विदेश चला जाए आगे पढ़ने के लिए, और वहां से वो फोन करता है, अपने माता पिता से बात करता है, और उस समय वो अपनी मां से पूछता है, आप मुझे याद करते हो कि भूल गए? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे तुझे भूलते ही कब है, तू तो हमारे दिल में समाया हुआ है। यही कहते हैं ना, दिल में समाना कोई फिजिकली थोड़ी है, एक भाव है। ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक भाव है। फिजिकली ये माइक में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। जिस तरह मां ने अपने बच्चे से कहा अरे तू तो हमारे दिल में समाया हुआ है, तुझे हम भूलते ही कब है, ये भाव। तो मिडिल एज में मीराबाई जैसे भक्तन जो हो गए, जिनका इतना घनिष्ठ प्यार था, तब उन्होंने अपने भजनों में ये बात लिखी, जहां देखूं वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है, लेकिन ये भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि कण कण में व्यापक है, मन सबकी बैठ के मैं पूजा करती रहूं, यह अंधश्रद्धा हो जाती है। दूसरी बात, शास्त्रों किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे, और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र जब लिखे तो कहा जाता कि उस समय के ऋषि मुनि सिद्ध थे। They were able to visualize time, समय को वो देख सकते थे कि आने वाला समय कलयुग कितना घोर पापाचार का युग होगा, तो मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे? जिस तरह एक बच्चा जब घुटना करना सीखता है तो घर से जैसे जैसे सब लोग बाहर जाते हैं आते हैं, उसको लगता है मैं भी जाऊं, तो वो घुटना करते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है। और उस समय मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं वो बाहर ना निकल जाए। तो मां क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब जानती है मां कोई कुत्ता उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर रहे, बाहर न निकल जाए। और बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, बाहर जैसे ही कुत्ते और गाय को देखता है क्या करता है, वापस अंदर आ जाता, बड़ा खुश होता है, आई एम सेफ, प्रकट करता है अपनी खुशी से, मैं बाहर नहीं गया। लेकिन वही बच्चा 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी मां पर, मेरी मां कैसी भोली है उसको इतना भी पता नहीं है, और हंसता हुआ निकल जाता है, बाहर जाके उस कुत्ते के साथ खेलता भी है, उसको घर में भी ले आता है, कहेगा लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाता था। ठीक इसी तरह 800-500 साल पूर्व भी लोगों को कोई अगर प्रेरित भी करता था कोई पाप करने के लिए, तो लोग क्या कहते थे, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब कोई उसको सावधान करता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, समझदार हो गया ना। और अगर उसको कहे कि भगवान तुझे देख रहा है, तो कहते वो देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, छुड़ाए ना, वो देखता क्यों है, अगर ईश्वर है तो मुझे छुड़ाए पाप कर्म से। वो भय भी नहीं रहा, जो भय बिठाना चाहा था ऋषि मुनियों ने समय को देखते हुए, आज वो भय कहां है। मनुष्य पाप करता ही चला जा रहा है, शास्त्रों को कहां मानता है। अगर सर्वव्यापकता की बात शास्त्रों की मानी, तो फिर ये भी माने कि भई ईश्वर देख रहा है, मैं पाप न करूं, वो बात कहां मानता है। एक बात मानो एक बात न मानो ऐसा थोड़ी चलता है, शास्त्रों को मानो तो पूरा ही मानो, और नहीं मानो तो पूरा ही नहीं मानो। कई बार कई लोग हमें कहते हैं क्या ब्रह्मा कुमारियां शास्त्रों को नहीं मानती है, शास्त्रों को हम बहुत अच्छे से मानते हैं, जिस भाव से वो बात शास्त्रों में लिखी गई है उस भाव को समझते हुए हम उसको स्वीकार करते हैं। अज्ञानता और अंधश्रद्धा के वश नहीं करते हैं, ये जरूर है, लेकिन भाव को समझते हुए उसको स्वीकार करते हुए हम उस भावना को अपने दिल में समाते हैं। इसलिए आज कहीं अगर हम अकेले भी जा रहे होते हैं और कोई हमें पूछते बहन जी आप अकेले हैं, हम कहेंगे नहीं भगवान हमारे साथ है, इस भावना को लेकर चलते हैं। तो सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है, तेज हवा चलती दिखानी है, तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा इसमें दिखाई है, और एकदम शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे कि पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा, कितनी शांत हवा है, जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो क्या स्वयं रचयिता नाम रूप आकार बिना होगा? कैसे हो सकता है? निराकार का शाब्दिक अर्थ जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन कंपैरिजन में जब उसको लेते हैं तो जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, उस भाव में निराकार का, जैसे भगवान की महिमा में आता है ईश्वर निर्गुण है, निर्गुण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन निर्गुण का भाव शास्त्रों में जो लिखा गया है वो उस तरीके से लिखा है कि प्रकृति के तीन गुण सात्विक राजसिक तामसिक, ये तीनों गुणों के प्रभाव से वो परे है। उस अर्थ में कहा निर्गुण, निराकार। निराकार माना जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, उसको कहेंगे निराकार। तभी तो चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, भगवान उवाच, हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण उसके सामने था, देख रहा था अर्जुन, फिर भी जब भगवान ने कहा इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा, अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है। इसका मतलब श्री कृष्ण के द्वारा बोलने वाली शक्ति कोई और थी, जो अजन्मा अव्यक्त था, जिसका फिजिकल कोई आकार नहीं। तब कहा कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, मैं तुझे देख सकता हूं। तो निराकार माना जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है। तो फिर उसका आकार कौन सा है? तो जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशुओं का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, लाइट, एनर्जी है, स्पार्क है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कल आपने परिचय में समझा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इस शरीर में चैतन्य ज्योति के समान है, इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योति है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। जिसकी पूजा भारत में हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, तो जो स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, इसी तरह ज्योति की आकृति ज्योतिर्लिंगम। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपने मन के भाव अर्पित कर सकते हैं। लेकिन है वो ज्योति, इसलिए ज्योतिर्लिंगम। और आज इसीलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम, द्वादश ज्योतिर्लिंगम महान तीर्थ स्थान माने गए हैं। देवताओं की पूजा, देवी देवताओं ने भी जिसको अपना आराध्य माना, श्री कृष्ण का आराध्य कौन था? शिव। श्री राम के आराध्य कौन थे? शिव। रामेश्वरम में श्री राम ने भी उसकी ही पूजा किया, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने उसकी पूजा की। जितनी भी देवियां हैं, ये देवियां कौन है? शिव शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव, महादेव, है ना? इसलिए देवी देवताओं की पूजा फिर भी भारत में स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी। गुजरात महाराष्ट्र में जाओ, गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी, मुर्गन की पूजा। तो राजस्थान में जाओ, रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी, खाटू श्याम जी की पूजा मिलेगी। और स्टेट वाइज हो गई पूजा, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। इसलिए जितने भी उनके मंदिर हैं भारत में, उनके नाम जो है गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, और उसके नाम के एंडिंग में या नाथ या ईश्वर होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो परमेश्वर है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ, सदा शिव सदा कल्याणकारी, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है। तो एक प्रलयनाथ है, एक भोलेनाथ है, एक कल्याणकारी है, एक विनाशकारी है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, कर्तव्य अलग, तो एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहा है? अगर वही परमेश्वर है तो उसको किसका ध्यान करने की आवश्यकता पड़ी और क्यों किया? कैलाश पर्वत पर बैठकर सालों ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश का। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो जो शंकर के भी आराध्य थे उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खुलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों ध्यान करके उस शक्ति को अपने में समाया, तब जाकर के वो आंख खुलते महाविनाश कर सके। तो इसीलिए कहा कि जो शिव की, शंकर को हमेशा गृहस्थ जीवन में देखा है, मां पार्वती ये दो बच्चे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं। क्या खुद की पूजा कर रहे थे? भारत में जब हम शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि कहते हैं, उस शंकर रात्रि तो नहीं कहा ना? अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? ओम नमः शिवाय का मंत्र मिलता है, किसी ने ओम नमः शंकराय का मंत्र दिया? अगर एक है तो देना चाहिए, क्यों नहीं देते? ये स्पष्ट है कि शिव और शंकर दोनों अलग है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु कहा जाता है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, विरोध हुआ, उसको मक्का से मदीना भेज दिया गया, वहां जाके प्रचार करो, यहां नहीं। जब लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए तब मोहम्मद पैगंबर साहब पुनः आए मक्का में, कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, तब कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से काबा का पवित्र पत्थर गिरा और यही कहा आकाशवाणी में, आप मेरे नाम पर लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से उस पत्थर की स्थापना मक्का में की, और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है वो पवित्र पत्थर के दर्शन के लिए। लेकिन हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाते हैं वो क्या करते हैं? वहां जाने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, उस पिल्लर को पत्थर मारते हैं। और फिर मक्का में जाकर के इस पवित्र पत्थर को चूमते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कहीं नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में वो ये जरूर कहते हैं, हे परवरदिगार, परमेश्वर को एड्रेस करते हुए, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश, एक ही है या अलग है? और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए दिखाते हैं कि मूसा जब माउंटेन पर गए, वहां उनको 10 कमांडमेंट्स 2 पत्थरों पर मिले, तब मूसा पूछता है, अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ जिसने 10 कमांडमेंट्स दिए, जो आज भी बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट में, उस समय मूसा पूछता है उस लाइट से कि लोग मुझे पूछेंगे ये किसने दिया आपको, तो मैं क्या कहूं, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तब वो लाइट कहती है यहोवा। यहोवा माना द सुप्रीम लाइट। इसीलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, गुरु नानक देव ने कहा एक नूर, एक नूर। बड़े स्पष्ट शब्द में उसने ईश्वर की महिमा गाई है, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, है ना, अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आता है, अजोनी। बड़ी स्पष्ट, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं किया ना कराई किसी से, ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा जाता है चिंकोन शेकी। जापान में जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर, 3 फुट दूर एक लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकोन शेकी, अर्थात जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक सभी ध्यान मुद्रा में, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहते सिद्धशिला। सिद्धशिला यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निराकार है, निरंजन है, उसी का ध्यान किया। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, जो कभी बुझती नहीं है। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक ही तो है, जो निराकार है, अजोनी है, निरंजन है, दुख सुख के चक्र से परे है, जिसको किसी बात का रंज नहीं। हाँ, नाम अलग अलग दे दिए, स्वरूप तो, आइडेंटिटी तो एक ही है। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। जब सभी देवी देवताओं ने उसकी पूजा की और ध्यान किया, जब महान आत्माओं ने उसको याद किया, ध्यान किया, जब उसकी ओर इशारा किया, तो हम लोग रास्ता भटके कहां से? हम नीचे क्यों आ गए? उनकी जिसने कहा, जिन्होंने इशारा किया उस तरफ, उसको याद करो, हम उनको पकड़ के बैठ गए। तो कितना दूर हो गए ईश्वर से हम। देवी देवताओं को छोड़ा, आज तो मनुष्य के मंदिर बनने लगे हैं, उनकी पूजा होने लगी है, क्या कहेंगे? कितना भटक गया इंसान, आज अंधेरे में है इंसान। सर्वधर्म मान्य। आज आपको कोई घर में भाई कहे, पिताजी कहे, चाचा कहे, मामा कहे, ताऊ कहे, जो भी कहे, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, स्वरूप तो आपका वही है, यह हर बार बदली हो जाता है। ऐसे ईश्वर को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, प्रभु का, मालिक का, हरि कहा, स्वरूप तो एक ही होना चाहिए या हर बार बदली हो जाना चाहिए? तो आज मनुष्य भटक गया है, सत्य से बहुत दूर हो गया है। दूसरी बात जो कही, सर्वोच्च शक्ति, तो शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, जो स्वयंभू है, सर्वोच्च शक्ति है, जो सभी चक्रों से पर है। जब जन्म ही नहीं लिया तो अजन्मा है, जिसने जन्म लिया उसको काल जरूर खाता है। श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई, श्री राम के भी, उन्होंने भी देह त्यागा, तो जिन्होंने भी देह धारण किया उसने त्यागा जरूर। शिव है जो महाकालेश्वर, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, अकाल मूरत, उसके नाम के अंदर ये महिमा आती है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पर है, अव्यक्त, जो देह और देह के संबंधों के चक्र से पर है, अकर्ता भोक्ता, न कर्म करता न फल भोक्ता है, उस चक्र से भी परे है। श्री राम ने भी कर्म किया तो फल भोगा, श्री कृष्ण ने भी कर्म किया तो फल भोगा, शिव ने कोई फल नहीं भोगा, निराकार रूप में उसकी पूजा है। लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ ज्ञाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात वो मनुष्य आत्मा को तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला, त्रिनेत्री है, और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए जो पत्ते, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्रिएट करने वाले हैं। त्रिदेव इसीलिए कहा गया है, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो तीनों मूर्तियों की भी उत्पत्ति है, इसीलिए तीनों का जन्म नहीं दिखाया। ब्रह्मा कहां से आया? विष्णु के नाभि कमल से। अच्छा, विष्णु कहां से आया? तो ब्रह्मा के नाभि कमल से। दोनों एक दूसरे के नाभि कमल से कैसे आए? ये तो ऐसे ही हो गया, पहले कौन फिर, अंडा या मुर्गी? तो पहले ब्रह्मा या पहले विष्णु? माना वन आफ्टर दी अदर, ब्रह्मा सृजन करता है तो विष्णु पालना करता है। लेकिन ये दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ओम से होती है, प्रकाश से होती है, ओम की ध्वनि से दिखाया, या प्रकाश से होती है। इसलिए शिव का अवतरण होता है संसार में अधर्म के समय पर, लेकिन ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि परमात्मा शिव कर्ता भोक्ता है, तो अपना कार्य किससे कराते हैं? ये तीन मूर्तियों के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना का कार्य कराते, शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य करण करावनहार कौन है? परमेश्वर। लेकिन खुद उस कर्म के बंधन में नहीं आता है, कराता है, करता नहीं है। तो सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, उसके मंदिरों के नाम में ही सर्व गुण कर्तव्य वाचक नाम है, तो वो शक्तियां समाई हुई है, स्पष्ट है। और उसका आने का समय, मिलने का समय यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब संसार पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता तब तब परमात्मा शिव अवतरित होकर के अधर्म का नाश कराता है और सत धर्म की पुनःस्थापना सृजन कराता है। ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा महाविनाश, और विष्णु द्वारा फिर नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य। तो यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आजकल तो हर जगह फोटो आइडेंटिटी चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता तो परमात्मा का भी परिचय सदाशिव, नाम ही है सदाशिव, उसका स्वरूप दिव्य ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज नूर, निराकार अखंड ज्योति लाइट, जो भी कहो। क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये क्वालिफिकेशन है। एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परमधाम का वासी है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, जो ब्रह्मांड के निवासी है। और ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, ये है संपूर्ण परिचय। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर आपका बच्चा या पोता आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है, अब तो जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? ठीक है,